أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم کتاب السلوک والاحسان سے پڑھ رہے ہیں، اور آخری موضوع اس میں چل رہا ہے، یعنی شیخ کامل کے ساتھ تعلق. تو اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مرید بلکہ ہر مسلمان کی روز مرہ زندگی کے آداب انہوں نے لکھے ہیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ نمبر ڈال ڈال کر کے باقاعدہ. تو اس میں ہم 32 آداب جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور آج 33واں شروع کرنا تھا، 33rd، کہ مرید کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، اس کا مطلب یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں، ورنہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتا رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے کسی خوفناک چیز سے ڈرا جاتا ہے، کسی نعوذ باللہ جس طرح موذی چیز سے، اذیت دینے والی چیز سے ڈرا جاتا ہے. جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا ہے کہ بھئی وہ اذیت دینے والی چیز ہوتی ہے، بچھو سے ڈرتا ہے کہ وہ اذیت دینے والی چیز ہوتی ہے، آگ سے ڈرتا ہے کہ وہ تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، شیر سے ڈرتا ہے کہ وہ یعنی چیر پھاڑ کر کھا جانے والی چیز ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ موذی چیز نہیں ہے، اذیت دینے والی ہستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جلا دینے والی ہستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو سراپا محبت ہیں، اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالصتاً محبت کرنے والی والی ہستی ہیں، تو محبت کرنے والی ہستی سے ڈرنے کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والی ہستی کو ناراض نہ کر دیا جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میں ان کی محبت سے محروم ہو جاؤں، کہ میں ان کی رحمت سے محروم ہو جاؤں اور وہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب، اور دوسرا یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوق کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہوں، میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہوں، اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو میری پرواہ تو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو میری پرواہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو میری بہت زیادہ پرواہ ہے. پرواہ کا مطلب سمجھتے ہیں، اردو زبان کا لفظ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کیئرس فار می، اللہ تعالیٰ کیئرس فار می. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو میری بہت زیادہ پرواہ ہے، لیکن اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے اعتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بے ادبی کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو میری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھ سے یعنی مجھ سے کچھ اللہ تعالیٰ کو ملتا نہیں ہے کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کر رہی ہوں. ठीक है, कि मैं नहीं हूंगी तो अल्लाह ताला का काम कैसे चलेगा, नाउज बिल्ला, ठीक है, मैं नहीं हूंगी तो अल्लाह ताला का काम कैसे चलेगा, अल्लाह ताला की ये कायनात कैसे चलेगी, नहीं, अल्लाह ताला को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरा होना या ना होना जो है वो बराबर है, ठीक है। यानी ये बड़े मिले जुले किस्म के जज्बात ना, एक तरफ जो है वो ये भी है कि अल्लाह ताला को मेरी परवाह बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि अल्लाह ताला को मेरी जरूरत कोई नहीं है। अब ये दोनों चीजें जो है ना, ये इनको आप यानी डिस्टिंग्विश करना, इनको जो है वो यानी अलग अलग समझना, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम आम तौर पर किस बात से वाकिफ होते हैं, हम किस बात से जो है वो यानी हमारा हमारा वास्ता पड़ता है आपस में इंसानों के अंदर, कि किसी को हमारी परवाह इसलिए होती है क्योंकि उसको हमारी जरूरत होती है, ठीक है, किसी को हमारी जरूरत होती है तो उसको हमारी परवाह भी होती है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी, ठीक है। जैसे बीवी को जो है वो शौहर की परवाह होती है, लेकिन साथ साथ शौहर की जरूरत भी होती है, ठीक है ना। जब शौहर इस दुनिया से चला जाता है तो बीवी का पहला जुमला क्या होता है कि अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा क्या बनेगा, ठीक है ना। उससे जो मेरी जरूरियात पूरी होती थी, मेरे बच्चों की जरूरियात पूरी होती थी, अब वो कैसे पूरी होंगी, ठीक है। तो बीवी को शौहर की परवाह भी होती है, लेकिन साथ साथ बीवी को शौहर की जरूरत भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ना हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला को हमारी परवाह है तो अल्लाह ताला को हमारी जरूरत भी होगी, या अल्लाह ताला को अगर हमारी परवाह यानी जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह ताला को हमारी परवाह भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का मामला जो है ना वो जुदा है, अल्लाह ताला का मामला अलग है, ठीक है। अल्लाह ताला को हमारी परवाह क्यों है, खालिसतन मोहब्बत की वजह से, खालिसतन मोहब्बत की वजह से। हम अल्लाह ताला को कुछ दे नहीं सकते, राइट, हम अल्लाह ताला को कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ होगा तो हम अल्लाह ताला को देंगे ना, और अल्लाह ताला के पास कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला को मिलने की, किसी चीज के मिलने की हाजत होगी, किसी चीज के मिलने की तमन्ना होगी, अगर अल्लाह ताला के पास किसी चीज की कमी होगी तो, ठीक है। तो अल्लाह ताला को हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को हमारी परवाह है, ठीक है। तो ये मामला जो है ना मखलूक में डिफरेंट होता है और खालिक के साथ ये मामला डिफरेंट है। तो इसको फिर हम इल्म के जरिए से जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं ना, जब तब हम अल्लाह ताला की इसके बारे में इस सिफत को जानते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला ऐसे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हैं कि उनको जरूरत भी नहीं है और उनको परवाह भी है हमारी, ठीक है। जब भी अल्लाह ताला खुद हमें कहते हैं कुरान मजीद के अंदर कि देखो तुम मेरे बारे में जो है ना वो खुद से नहीं जान सकोगे सारी चीजें, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, ठीक है, अर्रहमानु फसअल बिही खबीरा, कि तुम रहमान के बारे में उन लोगों से सवाल करो कि जो के उसके बारे में जानते हैं, यानी जिनको मैंने इल्म दिया है अपने बारे में, खुश होकर के, उनसे ज्यादा खुश होकर के उनको अपने बारे में इल्म दिया है ना, तुम उन लोगों से पूछो, तुम्हें खुद से मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, तुम्हें खुद से मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो तुम पूछो तब तुम्हें समझ में आएगा। यानी अल्लाह ताला हुक्म कर रहे हैं हमें, इल्म हासिल करो, इल्म वालों से इल्म हासिल करो मेरे बारे में, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मेरे बारे में ना तुम ये सारी तफसीलात जो है वो अपनी अकल से अपनी समझ से नहीं पा सकोगे ये तफसीलात। हाँ, मेरी मौजूदगी का एहसास तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो तो मैंने तुम्हारी फितरत में डाला हुआ है, ठीक है, कि मेरा कोई बनाने वाला है, ठीक है, मेरा कोई परवरदगार है, ये तो तुम्हारी फितरत में मैंने डाला हुआ है, लेकिन डिटेल्स नहीं डाली मैंने तुम्हारी फितरत के अंदर, डिटेल्स नहीं डाली है, डिटेल्स तो तुम्हें पूछनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला से डरता रहे कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अल्लाह को कोई फेवर नहीं कर रहा, जो अल्लाह ताला की इबादत कर रही हूं मैं, अल्लाह ताला के दीन की खिदमत कर रही हूं, राइट, मैं कोई अल्लाह ताला को फेवर नहीं कर रही, अल्लाह ताला के ऊपर एहसान नहीं कर रही, बल्कि मैं अपने ऊपर एहसान कर रही हूँ, मैं अपने आप को फेवर कर रही हूँ अल्लाह की इबादत करके और अल्लाह की नाराजगी से बच के मैं अपने ऊपर एहसान कर रही हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला को मेरे इन इबादतों की भी जरूरत नहीं है और अल्लाह ताला को मेरे तकवा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करते जाएंगे ना, ठीक है, तो उतना अल्लाह ताला की अजमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर आप में से अक्सर ने उम्मीद है कि दुआए हाजात पढ़ी हुई होगी, दुआए हाजात, ठीक है, याद भी करी हुई होगी आप में से अक्सर ने, ठीक है। क्या है दुआए हाजात? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ठीक है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जो कि अल हलीम है और अर्ग और अल करीम है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अजीम, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, ठीक है, सुभान अल्लाही रब्बिल अर्शिल अजीम। तो अब जो ये सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अजीम, ये अल्लाह ताला की अजमतें और तारीफें बयान हो रही है ना, लेकिन हम पढ़ते हैं और हमारे दिल में अजमत का कोई एहसास नहीं होता, हमारे दिल में अजमत का कोई इस्तेहजार नहीं होता। हम ये दुआ पढ़ रहे होते हैं रोजाना, भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, सलातुल हाजात भी पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो दुआए हाजात भी पढ़ रहे होते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी है ना, इस पाकी को हमने कभी सोचा नहीं होता, कभी हमने इसको समझा नहीं होता कि सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है इसको, ठीक है ना। उसी तरीके से सुबहान अल्लाह ज़िल अर्शिल अजीम, अर्श अजीम का, अर्श अजीम वाला, अर्श अजीम वाला, ठीक है। तो ये अर्श अजीम क्या चीज होती है, अर्श अजीम क्या चीज होती है, कभी हमने सोचा इसके बारे में? कभी इसका इल्म हासिल किया कि अर्श अजीम का मतलब क्या है, कितना बड़ा है ये अल्लाह ताला का अर्श, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला के अर्श को अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे ना कि ये कितना बड़ा है, कितना अजीम है, ठीक है, तो फिर जब हम ये अल्फाज पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला की अजमत हमारे सामने ज्यादा खुलेगी कि इतने बड़े अर्श वाला, इतने बड़े अर्श वाला। तो क्या है ये अर्श अजीम? जितनी अल्लाह ताला की मखलूक है, जितनी ये कायनात है, जितनी ये कायनात है, तो ये सारी की सारी कायनात जो है ना, जो हम यानी थोड़ा सा इसमें हमने देखे, इस नियत के साथ और अल्लाह ताला की अजमत के साथ अगर हम साइंस का भी इल्म हासिल करें, साइंस का भी इल्म हासिल करें, ठीक है ना, स्पेस साइंसेस, कॉस्मोलॉजी भी जिसको कहते हैं, फलकियात भी जिसको कहते हैं उर्दू में, अरबी में, ठीक है, तो इसका इल्म अगर इल्म हासिल करें तो हमें पता चलेगा कि जमीन कितनी बड़ी है, फिर सूरज उसके मुकाबले में कितना बड़ा है, 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन के मुकाबले में, और जमीन के मुकाबले में ये जो दूसरे सैयारे हैं, जुपिटर है, यूरेनस है, ये है, कितने बड़े बड़े सैयारे हैं, और सूरज उनसे भी कितना ज्यादा बड़ा है, और ये सारा का सारा जो निजाम है जिसको निजाम शमसी कहा जाता है, सोलर सिस्टम, ये कितना ज्यादा बड़ा है, कितना वक्त लगेगा अगर हम जो है वो एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक जाना चाहें, सिर्फ हमारे हमारी जमीन से चांद तक कितना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये चांद जो है वो जमीन के गर्द गिर्द कैसे घूम रहा है, ये जमीन जो है वो सूरज के गिर्द कैसे घूम रही है, ठीक है। सूरह रहमान की सिर्फ एक छोटी सी आयत है, वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, वल अर्ज़, और जमीन के उसने अल्लाह ताला ने उसको रखा है, ऐसे रखा है कि उसके अंदर जिंदगी है, अनाम, अनाम का मतलब होता है हयात, ठीक है, जिंदगी के लिए हमने जमीन को ऐसे प्लेस किया है, ऐसे रखा है। इस एक आयत की तफसीर में इतनी अजमत अल्लाह ताला के सामने आती है, इतनी अजमत कि अल्लाह ताला ने जमीन को ऐसे रखा है, ऐसी जगह पे रखा है, ऐसी रफ्तार के साथ रखा है, ऐसे ऐसे यानी फासले के ऊपर रखा है सूरज से और दूसरे सैयारों से, और जमीन का जो ये निजाम शमसी जिसके अंदर जमीन है, इस निजाम शमसी को हमने जो मिल्की वे गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर हमने ऐसे मुकाम के ऊपर रखा है कि जिसकी वजह से जमीन के अंदर जिंदगी हो सकती है। वरना अगर जरा सा भी कुछ फर्क होता जमीन की इस पोजिशनिंग के अंदर, तो जमीन के अंदर जिंदगी नहीं हो सकती थी। इतनी गर्मी होती या इतनी सर्दी होती या इस तरीके से जो है वो टकरा करके बर्बाद हो जाती, हत्ता के जमीन का जो है वो ये जो जो सारा का सारा ये माहौल है जमीन का, एटमोस्फेयर जिसको कहते हैं, ये एटमोस्फेयर जमीन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता था अगर जमीन की पोजिशनिंग के अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली हो जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस एक आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं, वल अर्ध वदअहा लिल अनाम, कि हमने जमीन को पोजिशन ऐसे किया है कि उसके अंदर जिंदगी होती है। इस आयत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वल अर्ध खलकहा लिल अनाम, कि हमने जमीन को तख्लीक किया जिंदगी के लिए, नहीं वदअहा लिल अनाम का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि खलकहा लिल अनाम से भी बात हो सकती थी। वदअहा के अंदर इतनी सारी तफसील मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कायनात का साइज है, ये जो दूसरे स्टार्स होते हैं, ये जो गैलेक्सीज होती हैं, ये जो इन्होंने अपने टेलीस्कोप्स के जरिए से उनकी साइजेस कैलकुलेट करके बताए हैं, खाली कोई कोई हो करके नहीं आया। मार्स तक तो अभी मुश्किल से जो है वो रोवर पहुंचा है, ठीक है, तो किसी दूसरी गैलेक्सी तक कोई कोई नहीं पहुंचा और ना कभी पहुंचेगा। इतनी दूर है वो कि कभी भी वहां पे कोई चीज नहीं पहुंच सकती, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो इतना दूर है, वो इतना दूर है। तो अल्लाह ताला का जो जो अर्श है ना, उसने इन सब का इहाता किया हुआ है, इन सब को अपने गिर्द जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। और उस अर्श के अंदर जो है वो एक कुर्सी भी है अल्लाह ताला की, ठीक है। और हदीस मुबारक, अब देखें ये साइंस की भी इल्म है और साथ साथ हदीस मुबारक का भी इल्म है। तो हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला की कुर्सी कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला की कुर्सी सारे जमीने और आसमान सब के सब जो है ना, वो अगर एक अंगूठी की मानिंद है, अगर एक अंगूठी की मानिंद है, तो अल्लाह ताला की जो कुर्सी है वो एक बहुत बड़े मैदान की मानिंद है। ये तनासुब है तमाम आसमानों और जमीन के साइज का अल्लाह ताला की कुर्सी के साथ, ठीक है। कि एक अंगूठी जितनी छोटी होती है उतना ही जमीन और आसमान है, और अल्लाह ताला की कुर्सी जो है वो एक बड़े से मैदान के बराबर है जिसके अंदर वो अंगूठी पड़ी हुई है। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह ताला का अर्श है वो और अल्लाह ताला की कुर्सी के साइज का ये तनासुब है कि अल्लाह ताला की कुर्सी जो है ना वो एक अंगूठी की मानिंद है, एक अंगूठी की मानिंद है, और अल्लाह ताला का अर्श जो है वो एक मैदान की मानिंद है। ये तनासुब है कुर्सी और अर्श के दरमियान। तो अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तमाम मखलूक जो अल्लाह ताला की है उनमें सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह ताला की क्या है, अल्लाह ताला का अर्श। अल्लाह ताला का अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है। तो अब जब ये सब कुछ इतना बड़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बड़े होंगे, ठीक है ना। अब ये जब अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास हमारे दिल के अंदर आ जाए, कुछ अंदाजा हो जाए, फिर उसके बाद आप ये वाली दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुभानल्लाही दिल अर्शिल अजीम अल्हम्दुलिल्लाही, फिर उसके बाद पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, राइट। तमाम तारीफें किसके लिए, रब्बुल आलमीन के लिए। रब्बुल आलमीन का क्या मतलब होता है, ये जितनी आलमीन है, जितनी जो है वो मखलूक है, जितने यूनिवर्स है, जितने आसमान है, इन सब के अंदर जो मखलूक है उसको पालने वाला, उसको पालने वाला, उसको खिलाने वाला, उसकी जरूरियात को पूरी करने वाला, उसकी तकलीफों को दूर करने वाला कौन है, अल्लाह, राइट। अल्लाह वो एक अकेला सबको रिस्क देता है, सिर्फ हमें हमारे घर के जो है वो बच्चों को रिस्क नहीं देता, राइट, सिर्फ इस दुनिया के इंसानों को रिस्क नहीं देता, बल्कि जितनी मखलूक है इस दुनिया के अंदर या इस दुनिया के अलावा सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेला रिस्क देने वाला है, ठीक है। तो ये इल्म अगर हमें थोड़ा सा भी हासिल हो, हमें कितना इल्म हासिल हो सकता है अल्लाह के बारे में? ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इतना भी अगर इल्म हासिल हो जाए ना, तो अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल के अंदर ऐसी बैठेगी, और मखलूक की जो अजमत हमारे अंदर बैठी हुई है ना, हमारे अंदर क्या है, मखलूक की अजमत, बल्कि अल्लाह ताला के दुश्मनों की अजमत, ठीक है, उनको हम बड़ा समझते हैं, उनको हम कामयाब समझते हैं, उनको समझते हैं कि हमने उनको नाराज कर दिया तो बस अब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, राइट? अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल में नहीं होती ना इस वजह से, ठीक है? तो अल्लाह ताला से डरता रहे, अल्लाह ताला के बारे में जानता रहे, अल्लाह ताला के बारे में सीखता रहे, ठीक है ना, और तवज्जो के साथ बात को सुनता रहे, तभी सीख सकता है, वरना इसके बगैर, तवज्जो के साथ बात को सुने बगैर कोई इंसान कुछ नहीं सीख सकता, कुछ नहीं सीख सकता अगर वो बात को तवज्जो से सुनना शुरू ना करे, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बात को तवज्जो से सुनने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, और इसके बहाने, इसके जरिए से जो है वो आपके बारे में सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, तो फिर अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल में बैठेगी, और अल्लाह ताला से डरना जो है वो हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना। फिर उसके बाद जो है वो मौत को याद रखे, ठीक है, यानी अगला अदब मौत को याद रखे। मौत को याद रखने का मतलब क्या होता है कि जो मेरी ये जिंदगी गुजर रही है ना, इसका एक इख्तिताम है, इसका एक खात्मा है, इस दुनिया की जिंदगी का। वैसे तो इंसान का कोई खात्मा नहीं है, इंसान हमेशा हमेशा के लिए है, ठीक है, इंसान हमेशा हमेशा से नहीं है, हमेशा हमेशा से नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला, ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए है, यानी कभी कोई खात्मा नहीं है हमारा, लेकिन इस दुनिया की जिंदगी के अंदर खात्मा है हमारा, ये दुनिया की जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। तो उसके लिए एक तो मरने वालों को देखता रहे, ठीक है, मरने वाले उनके बारे में सोचे कि देखो ये भी मेरी तरह ही रहते थे, ठीक है ना, ये भी अच्छे लोग थे, ये भी बुरे लोग थे, ये भी जो है वो काम के लोग थे, ये भी जो है वो कितना इनकी जरूरत थी लोगों को, लेकिन सब के सब इस दुनिया से चले गए, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां, अच्छी अच्छी हस्तियां जो गुजरी हैं, ठीक है, तो वो क्या दुनिया के लोगों को उनकी जरूरत नहीं थी, वो क्या अच्छे काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो अहम लोग नहीं थे, बहुत अहम लोग थे, बड़ी जरूरत थी लोगों को, अगर वो दुनिया में और रहते तो शायद कितना फायदा हो जाता लोगों का, लेकिन वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, ठीक है। वो जो एक आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर ये तस्वीर भी चलती रहती है, लोग वायरल करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, कि उस पे लिखा होता है एक कब्र के, कब्र की तस्वीर के साथ, कि मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम थी यही मेरा मेरी वहम थी। वहम वैसे मुअन्नस तो नहीं होता, लेकिन मैं अहम था यही वहम था, ठीक है। तो ये मौत जो है ना, ये किसी को नहीं छोड़ती, चाहे कितना ही अहम शख्स क्यों ना, ठीक है, और हम तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी अहम नहीं है, राइट? जो अहम तरीन लोग थे वो दुनिया में ना रह सके, तो हमारी क्या हैसियत है, ठीक है। तो वक्त जो है ना वो तेजी से गुजर रहा है, और मैं अपनी मौत की तरफ बड़ी कंसिस्टेंटली बढ़ रही हूं, एक एक लम्हा जो है ना वो मेरी जिंदगी का वो मौत की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। पता है मुझे सबसे ज्यादा जो है ना वो इस बात का एहसास कब होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में, जब माइक्रोवेव होता है ना घर के अंदर, आपकी किचन के अंदर आप पास माइक्रोवेव होगा अगर, ठीक है, तो माइक्रोवेव के अंदर जो है ना वो कभी आप चाय गर्म करने के लिए रखते हैं, कभी आप जो है वो कोई और चीज गर्म करने के लिए रखते हैं, और उसके अंदर जो है ना वो आप टाइमर लगा देते हैं ना 1 मिनट के लिए, जी मैंने इसको गर्म करना है, तो उसमें जो है ना वो सेकेंड्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आने शुरू हो जाते हैं, 59, 58, 57, 56, 55, 54, और आपको वहां पे खड़े होकर के देखना भी होता है, कभी जो है वो आप कुछ और ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो चीज उबल करके कहीं गिर ना जाए, तो वो अपने माइक्रोवेव के अंदर रखी हुई होती है, तो अब आप वहां से हट भी नहीं सकते, आपको देखना होता है उस चीज को कि भाई उबल के कहीं गिर ना जाए। तो अब उस वक्त जो है ना, आप सेकंड्स को देख रहे होते हैं कि सेकंड्स कितने हो गए इसके। उस वक्त जो है ना, वो ये एहसास कि देखो ये जो सेकंड्स चल रहे हैं ना, ये काउंट डाउन हो रहा है, काउंट डाउन, ये मेरी जिंदगी का भी काउंट डाउन हो रहा है, ये सिर्फ माइक्रोवेव के 1 मिनट का काउंट डाउन नहीं हो रहा, बल्कि मेरी जिंदगी का भी काउंट डाउन चल रहा है। जितनी भी मेरे रब ने मेरी जिंदगी रखी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो घट रही है। ये जो मैं इंतजार कर रहा हूं माइक्रोवेव के खत्म होने का, तो इस इंतजार के अंदर मेरी जिंदगी भी कम हो रही है। क्या ख्याल है आपकी? नहीं होती? मेरी तो होती है। आपकी नहीं होती कम? कोई ऐसा है? नहीं, मेरी कम नहीं होती। मेरी तो बढ़ती है जिंदगी, आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है इंसान को? यानी इस तरह से जो है वो जिंदगी कम होने का एहसास, ठीक है, फायदा ये है कि इंसान संभल जाए, ठीक है, इंसान संभल जाए और वक्त को जाया करना छोड़ दे। किसी भी कोई ऐसी चीज जो कि उसके वक्त को जाया करती हुई नजर आए ना, तो वो उसको बुरी लगनी शुरू हो जाए, वो उसको तकलीफ पहुंचानी शुरू हो जाए। जाया करने का मतलब क्या है? वक्त को जाया करने का मतलब क्या है? कि आखिरत के लिए वो जखीरा ना बन रहा हो वक्त, वो वक्त आखिरत का जखीरा नहीं बन रहा, उसके अंदर वो सवाब नहीं कमा रहा, ठीक है ना। अगर वो सवाब नहीं कमा रहा तो इसका मतलब ये है कि वक्त जाया कर रहा है, वक्त जाया हो रहा है, ठीक है। तो वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, जो लोग चले गए वो मुझसे ज्यादा अहम थे लेकिन फिर वो भी चले गए, और इसी तरीके से मैंने भी जो है वो किसी ना किसी लम्हे इस दुनिया से गुजर जाना है, चाहे कितने ही जो है वो लोगों को मेरी जरूरत हो, लेकिन मौत ने मुझे मोहलत नहीं देनी है, ठीक है। तो मौत को याद रखने के लिए भी फिर इस तरह के जो ये सब कहलाते हैं, ये असबाब होते हैं मौत को याद रखने वाले, ठीक है, मौत की याद दिलाने वाले असबाब। तो इंसान अपने आप को ना, एक तो ये कि इनसे सराउंड करके रखे, ऐसी जगह पे रहे, ऐसे माहौल के अंदर रहे कि जहां पे मौत से गफलत ना मिले उसको, बल्कि उसको मौत की याद आती रहे। तो ऐसे माहौल का भी इंतजाम करे अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि माहौल का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि माहौल के अंदर रहने के बावजूद जो है वो गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। अब वो तवज्जो नहीं दे रहा, अब वो पे अटेंशन नहीं कर रहा किसी बात के ऊपर, तो माहौल का क्या फायदा हुआ उसको, ठीक है। तो माहौल का भी इंतजाम करे और साथ साथ जो है वो उस माहौल के बारे में फिक्रमंद भी रहे कि वाकई यानी जो यहाँ पे मुझे सिखाया जा रहा है कि वक्त कीमती है, इसको जाया नहीं करना है और ये खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो है वो याद दहानी भी मैं आपको करता रहे। और वो उसी वक्त होगा जब वो इबरत की निगाह से देखेगा चीजों को, इबरत की निगाह से चीजों को देखेगा। गफलत से कैसे निकलना है, गफलत से कैसे निकलना है, इन्होंने सवाल किया, गफलत से कैसे निकलना है। गफलत का जिस कमरे में आप बैठी हुई हैं, उस कमरे का दरवाजा खोलें और उसमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। एक कमरा होता है जिसका नाम होता है गफलत, उस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ता है, उसमें से बाहर निकल जाना पड़ता है, ठीक है। तो गफलत से कैसे निकलना है, क्या भाई? मैं तो आपको यही जवाब दे सकता हूँ, और क्या जवाब दूं फिर? पिछले जो 10 मिनट से ये आजिज बक बक करे चला जा रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? सही। तो भाई अगर आपने पिछले 5 मिनट की बात को गौर से सुना होता तो आपको, आप गफलत से निकल आती, ठीक है। तो अब बात को अगर हमने सुनना नहीं है और हमने समझना नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स कभी भी गफलत से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो आपका सवाल जो है ना, वो गफलत से बाहर कैसे निकलना है, भाई बात को सुने, ठीक है ना। जब आप क्लास खत्म हो जाएगी तो चंद घंटों के बाद रिकॉर्डिंग शेयर होगी ना, उस रिकॉर्डिंग को प्ले करें, उसको रिवाइंड कर करके जो है ना, फिर से सुने बात को, फिर से सुने बात को, फिर से सुने बात को, और अपने दिमाग शरीफ जो है अल्लाह ताला ने दिया है उसको इस्तेमाल भी करती रहे। यहाँ भाई इसका मतलब क्या है, जो बोल रहे हैं इसका क्या, भाई अब उर्दू जुबान में बोल रहे हैं ना, कोई फारसी जुबान में या चाइनीज जुबान में तो नहीं बोल रहे। तो बात को बार बार सुनना भी पड़ता है। एक बात पहली दफा में समझ में नहीं आती, दूसरी दफा सुने, दूसरी दफा समझ में नहीं आती, तीसरी दफा सुने, तीसरी दफा समझ में आती, चौथी दफा सुने, पांचवी दफा में समझ में आ जाएगी, पांचवी दफा में समझ में आ जाएगी ना, अब जो है वो छठी दफा सुने याद रखने के लिए, फिर सातवीं दफा सुने याद रखने के लिए, ठीक है, तब जो है ना वो आपकी गफलत बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात को सुनना जो है ना, ये ही गफलत से निकलने का तरीका है, यही गफलत से निकलने का तरीका है। गफलत किसी को तो मजाक कर रहा था आपसे कि कमरे का नाम है, कमरे का दरवाजा खोलने से बाहर से निकल जाएंगे, तो मजाक, ठीक है, लेकिन तरीका गफलत से निकलने का यही है, तवज्जो से बात को सुने और दिमाग शरीफ को इस्तेमाल करके उसको समझें और सोचें कि हाँ अच्छा इसका मेरी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या है, ये है गफलत से निकलने का तरीका, बस और कोई तरीका नहीं है गफलत से निकलने का, यही एक तरीका है गफलत से निकलने का, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो सवाल किया है उसको पढ़ लीजिए कि हाउ टू बी माइंडफुल ऑफ डेथ बट नॉट गेट एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड। हाउ टू बी माइंडफुल ऑफ डेथ बट नॉट गेट एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड, ठीक है ना। अब ये देखें, ये सवाल है, ठीक है, जिसका के पिछले 10 मिनट में हमने बात नहीं करी है, इसको हमने अभी नहीं समझाया है, तो ये एक सवाल बनता है करने का, ठीक है। तो अब इस सवाल का जवाब क्या है कि भाई हाउ टू बी माइंडफुल ऑफ डेथ, यानी मौत से डरने के साथ साथ जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी भी ना हो, डिप्रेशन और एंजाइटी भी ना हो, ये दोनों काम एक साथ कैसे करें, ठीक है, क्योंकि हम जो इंसान हैं तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं ना, तो फिर हम उनको गड़बड़ कर देते हैं, उनको आपस में मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। तो उनको डिस्टिंग्विशेबल बनाना, उनको जो है वो तमीज करना दो चीजों के अंदर, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो मौत से डरे भी, लेकिन वो यानी एक नफसियाती मरीज भी ना बन जाए मौत को सोच सोच करके, ठीक है। तो अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका जो है ना वो ये है कि जो मौत से डरने वाले नेक लोग गुजरे हैं, ठीक है, मौत से डरने वाले जो नेक लोग गुजरे हैं ना, ठीक है, उनके हालात जिंदगी को देखे या उनके हालात जिंदगी को पढ़े, जो जिंदा हैं तो उनके हालात जिंदगी को देखे कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, और जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनके हालात जिंदगी को पढ़े, ठीक है, कि भाई वो लोग जो थे ना वो मौत से डरने वाले लोग थे लेकिन वो डिप्रेशन का और एंजाइटी का शिकार नहीं होते थे, तो भाई क्यों नहीं होते थे, कैसे नहीं होते थे, ठीक है ना, बड़े ही खुशबाश रहते थे, बड़े ही जो है वो यानी पॉजिटिव उनकी जिंदगी होती थी, और हर वक्त जो है वो मेहनत के अंदर लगे रहते थे, कामकाज के अंदर लगे रहते थे, ठीक है। तो वो कैसे कैसे ये दोनों काम एक साथ करते थे कि मौत से भी डर रहे हैं और जो है वो यानी एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की जिंदगी भी गुजार रहे हैं, नफसियाती मरीज होकर के जिंदगी नहीं गुजार रहे, ठीक है। तो उनकी जिंदगी को जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इस कैफियत को खोलेंगे कि देखो कैसे ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ से ही बात शुरू होती है, ठीक है, कि अल्लाह मुझे आप मौत का खौफ भी अता फरमा दें लेकिन मुझे मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दें। इस वजह से जो है ना ये मौत को याद रखने का लफ्ज इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे जो हजरत ने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो ये नहीं है कि मौत से डरे, वो तो अल्लाह ताला से डरने का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मौत से डरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मौत को याद रखने का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मौत को याद रखने का मतलब क्या होता है, जिस तरह अल्लाह ताला से डरने का जो है वो अच्छा खासा मतलब बयान किया गया था, तब बात समझ में आई कि अच्छा अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है, उसी तरीके से मौत को याद रखने का मतलब क्या है, मौत कोई कोई वो तो नहीं है, कोई नज़म तो नहीं है कि आप उसको याद कर रहे हैं, राइट? मौत जो है वो कोई कुरान मजीद की आयत तो नहीं है क्या, जिस तरह आयत को याद करते हैं उस तरह मौत को याद करें, या मौत किसी इंसान कोई इंसान तो नहीं है कि भाई मैं फलाने इंसान को याद कर रहा हूँ तो उसी तरीके से मौत को याद करना, नहीं, मौत को याद करने का तो मतलब ये सब कुछ नहीं होता। फिर क्या मतलब होता है मौत को याद करने का? मौत की तैयारी करने का, मौत की तैयारी, ठीक है? मौत की तैयारी जो है ना, वो नेकी के काम करके और गुनाहों से बच के, ये मौत की तैयारी, ठीक है? तो इस वजह से ना, ये मौत से डरना जो है वो अगेन वही बात कि जिस तरह अल्लाह से अजियत पहुंचाने वाली चीज की तरह नहीं डरना है, तो उसी तरीके से मौत से डरने का मतलब भी ये नहीं था कि कोई अजियत पहुंचाने वाली चीज है उससे डरना है, बल्कि मौत की तैयारी करना। तो अब मौत की तैयारी क्या है? ये है कि मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अपना जखीरा बनाते रहें, जखीरा बनाते रहें, ठीक है ना? और उस जिंदगी के अंदर, जो मौत के बाद वाली जिंदगी है, उसमें जो तकलीफ पहुंचाने वाले वजह बन सकती हैं चीजें, उनसे बचते रहें, उनसे बचते रहें, उनसे बचते रहें, ठीक है? जब भी बड़ा आसान सा एक वाक्य जो हमारे बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि एक नौजवान बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो क्या मतलब था उस नौजवान का ये बात कहने का? कि वो एक नफसियाती मरीज बन रहा था, वो एक नफसियाती मरीज बन रहा था मौत से डर करके, कि मर जाऊंगा फिर क्या होगा फिर उसके बाद, और मौत के दौरान मुझे क्या तकलीफ होगी, और ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक नफसियाती मरीज बन रहा था। तो बुजुर्ग ने उसको क्या जवाब दिया कि तुम सदका खैरात करना शुरू करो। सदका खैरात का मतलब क्या होता है? नेकियां करना शुरू करो, चाहे वो मुसल्ले की नेकियां हों, चाहे वो हरम की नेकियां हों, चाहे वो किसी की मदद करने की नेकी हो, चाहे किसी को जो है वो माल पैसा से मदद करने की नेकी हो, चाहे किसी को अपनी अपनी सलाहियतों से मदद करने की नेकी हो, यानी तुम नेकियां करना शुरू कर दो, सदका करना शुरू कर दो, यानी नेकियां करना शुरू कर दो, ठीक है? तो उसने जो है वो बात मान ली, उसने बात मान ली और उसने वाकई नेकियां करनी शुरू कर दी, ठीक है ना? हमारी तरह नहीं था कि बस सवाल करना है लेकिन जो जवाब मिले तो उस पर अमल नहीं करना, ऐसा तो नहीं था वो नौजवान। तो उसने जो है वो नेकियां करनी शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद वो आया बुजुर्ग के पास और कहने लगा कि अब तो मुझे मौत से कोई डर ही नहीं लगता, तो लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मौत से डर क्यों नहीं लग रहा। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि देखो, पहले जो है ना, वो मौत के बाद वाली जो जिंदगी थी ना, वहां पे तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, वहां पे तुम्हारे पास ना रहने की जगह थी, ना कोई आसाइश की का सामान था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुम नेकियां करते ही नहीं थे, गुनाहों से बचते ही नहीं थे, तो वहां पे तो तुम्हारे लिए अजाब थे। तो तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला ने खौफ पैदा कर दिया था, तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला ने खौफ पैदा कर दिया था। क्या मतलब? कि जो नफसियाती मर्ज होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए हुए होते हैं हमारे अंदर, ठीक है? क्योंकि हम अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहे होते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे होते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला सजा के तौर पर हमारे अंदर ये नफसियाती मर्ज पैदा कर देते हैं, ठीक है ना? यानी हम किसी की ऐसी चीज से डरना शुरू कर देते हैं जिससे डरना नहीं चाहिए था, ये नफसियाती मर्ज है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि इसने बात मान ली, इसने जो है वो अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने उसके इस नफसियाती कैफियत को खत्म कर दिया, अब उसको मौत से डर नहीं लग रहा था, ठीक है? तो उन्होंने फिर जवाब दिया इसका, समझा दिया उसको कि भाई अब तुमने वहां पे अपना यानी इंतजाम कर लिया है कि जब तुम मर करके उस दुनिया में जाओगे तो तुम्हारे पास घर भी होगा, तुम्हारे पास अच्छे मिलने जुलने वाले लोग भी होंगे, तुम्हारे पास जो है वो बाकी आसाइशें भी होंगी। अब तुम्हारे दिल के अंदर से वो डर वाली कैफियत अल्लाह ताला ने निकाल ली है, ठीक है? तो नॉट टू गेट एंक्शियस एंड डिप्रेस का जो है ना, वो यही जवाब है कि हम मौत की तैयारी जो है वो सीखें, इल्म हासिल करें नेकी क्या होती है, और इल्म हासिल करें कि गुनाह क्या होता है, गुनाहों से बचें, और नेकियों के लिए दौड़ दौड़ करके हम नेकियां करें बस। फिर उसके बाद ये जो एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड जो कि असल में यानी साइकोटिक स्टेट्स होती हैं इंसान की, तो ये खत्म हो जाएंगी इंसान के अंदर से। किसी और ने सवाल किया है कि वक्त को कैसे जाया करने से इंसान बच सकता है, क्योंकि बाज दफा इंसान वक्त को जाया कर रहा होता है। लेकिन इंसान को इस चीज का अंदाजा नहीं होता, फिर जब याद आता है तब तक वक्त जाया हो चुका होता है। हाउ कैन वन कॉम्पेंसेट दैट टाइम विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम? ठीक है, वक्त को जाया करने से इंसान कैसे बच सकता है, ये आपके सवाल का पहला हिस्सा है। तो इसका जवाब तो ये है कि अपने आप को वही सारी जो सारी नसीहतें हैं ना कि नेक सोहबत इख्तियार करे, ठीक है, इल्म हासिल करे, अपने आप को खिदमत के कामों के अंदर लगाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस लिए होती हैं कि इंसान अगर खुद कोई काम नहीं कर पा रहा तो वो किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाए ना, तो सिस्टम के प्रेशर में आकर के वो काम कर लेता है। लेकिन जैसे आपने भी देखा होगा कि भाई अकेले मुझसे फलाना काम नहीं होता, लेकिन अगर मैं काम यानी मैं एक सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं ना, तो फिर वो काम मुझसे होना शुरू हो जाता है कि मेरे ऊपर एक पीयर प्रेशर पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल जो है वो मेरे ऊपर एक पुल होता है, तो अब जो है ना वो मुझे काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब जब आप काम कर रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, नेकी का काम कर रहे होंगे, इल्म हासिल करने का काम कर रहे होंगे, तो वक्त जाया कैसे होगा? फिर वक्त तो जाया नहीं होगा, फिर वक्त तो आपका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। मिसाल के तौर पर एक बस मिसाल है एक, ठीक है, हम कई दफा क्लास के अंदर अनाउंस कर चुके हैं कि भाई इस क्लास के अंदर जो बातें की जा रही होती हैं तो इनको इनकी रिपिटेशन के लिए जो है ना, इनकी तकरार के लिए आप लोग अपने ग्रुप्स बनाएं, इनकी अपने लिए अपने ग्रुप्स बनाएं, ठीक है ना, जिसको तकरार ग्रुप्स कहते हैं। खुद से कुछ बहुत कम लोग होंगे जो कि खुद से पहली दफा बात को समझ सकेंगे और उसको जो है ना वो रिमाइंड कर सकेंगे, अपने आप को रिमाइंड करवा सकेंगे, नोट्स बना रहे होंगे और फिर उन नोट्स को जो है दोबारा से देखते होंगे और फिर उसके ऊपर गौर करते होंगे और फिर उसके ऊपर अमल करने का जो है वो कोई तरीका सोचते होंगे। बहुत कम लोग हैं, 81 80 लोग हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर। शायद ऐसा करने वाली जो है वो तीन, ज्यादा से ज्यादा खवातीन मौजूद, तीन, जो कि खुद से अपने नोट्स बनाती होंगी और खुद से जो है वो नोट्स को जो है ना वो समझती होंगी बाद में और फिर उसके ऊपर अमल करने का कोई बाकायदा तहैया करती होंगी, प्लान करती होंगी। 80 स्टूडेंट्स में से आई कैन बेट यू सिर्फ दो या तीन ऐसी होती होंगी, उससे ज्यादा नहीं होती होंगी। ठीक है, लेकिन अगर 10 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लें और हफ्ते में जो है ना वो आधे घंटे के लिए फिर मिल जाया करें ऑनलाइन, अल्लाह ताला ने कितनी सहूलियात दी हुई है, कितना फ्री का माल हमारे पास अवेलेबल है, फ्री की जो है वो एप्स हमारे पास अवेलेबल है कि जिसके ऊपर के हम तकरार की नीयत से जो है वो आधे घंटे के लिए जमा हो जाएं और उसके अंदर इस क्लास के अंदर क्या पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हुए थे, क्या हमें सिखाए गए थे, उनकी जो है वो हम एक दफा तकरार कर लें, आप यकीन करें आपका इल्म जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आपका इल्म जो है वो बढ़ेगा और आपके लिए उस इल्म के ऊपर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वक्त जाया होने से आपका बच जाएगा। ठीक है, इल्म हासिल होगा, अमल के तरीके सामने आएंगे, आपस में इन चीजों के बारे में बात करेंगी, बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो लोग कर रही हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, तकरार ग्रुप हमने तो एक बना दिया, ठीक है ना, तो अब जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, जो नहीं कर रहा उसको फायदा नहीं हो रहा। खैर, दूसरा सवाल ये है आपका कि बाज दफा इंसान वक्त को जाया कर रहा होता है लेकिन इंसान को इस चीज का अंदाजा नहीं होता, फिर जब याद आता है तब वक्त जाया हो चुका होता है, अब वो जो वक्त जाया हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इंसान क्या करे, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक बड़ी गुर की चीज बताई, बड़ी गुर की चीज, ठीक है, कि जिससे कि क्या होता है कि जाया क्या हुआ जो आपका वक्त होता है ना, तो वो भी उसका जया जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, वो कैसे है? ये अगर आप में से कोई बता दे। जी, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा गुर अता फरमाया है कि जिससे कि जाया किया हुआ वक्त जो है वो लौट के तो नहीं आता वो वक्त, लेकिन उसका जो जिया है ना वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपका वक्त भी जाया नहीं होता। यानी अब ये भी नहीं कि उसके खत्म करने के अंदर जो है ना वो आपके मजीद टाइम जाया हो रहा है, नहीं वो टाइम भी नहीं जाया होता। वो क्या है जी, उसको कहते हैं इस्तिग़फार, उसको इस्तिग़फार कहते हैं, ठीक है ना, और उसको तौबा इस्तिग़फार भी कह देते, इस्तिग़फार, ठीक है। उस इस्तिग़फार से क्या होता है कि जो आपने वक्त जाया कर दिया उसका जो नुकसान है वो खत्म कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, और जिस वक्त आप तौबा कर रहे होते हैं वो वक्त भी जाया नहीं हो रहा होता। यानी इस्तिग़फार करने से ना सिर्फ ये कि पीछे का नुकसान खत्म हो रहा होता है, बल्कि इस्तिग़फार करना खुद एक नेकी का काम भी है, खुद एक नेकी का काम भी है। तो जितना आप इस्तिग़फार करती रहेंगी उतना मजीद नेकियां भी आपके नामे अमाल के अंदर ऐड होती रहेंगी, और पिछले जो गुनाह हैं वो भी माफ होते रहेंगे। ये किसने अता फरमाया हमें, हमारे परवरदिगार ने, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर हम कुर्बान जाएं, रहमत के ऊपर कुर्बान जाएं कि हम उसकी नाफरमानी भी करते हैं, उसके दिए हुए जिंदगी को जाया भी करते हैं, और जो है वो बेकदरी भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हमें नहीं छोड़ा, उसकी रहमत ने फिर भी गवारा ना किया कि मेरे बंदों की जिंदगी जाया हो जाए। एक ऐसी चीज दे दी जिसके लिए हमें कुछ कुछ हमें आसमान से तारे तोड़ के नहीं लाने पड़ते, उसके लिए कोई हमें उठक बैठक नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। घर बैठे कुर्सी पे बैठे हुए, बिस्तर पे लेटे हुए, काम काज करते हुए किचन के अंदर, राइट, इस्तग़फार इस्तग़फार। लेकिन इस्तग़फार जो है ना वो दिल की नदामत के साथ, दिल की नदामत के साथ, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर बस कर ली ना, जुबान से इस्तग़फार और दिल के अंदर नदामत, बस बेड़ा पार है, बेड़ा पार है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो 35वां है तो वो तो फिर अब अगली क्लास के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास का वक्त खत्म हो चुका है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम अगली क्लास शुरू कर लेते हैं।